ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 6 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 16 அண்ட் 17. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே முகாரவிந்த் சே நிக்லி ஹுயி இன் அம்ருத்மய சப்தோ கோ மேரே சாத் சாத் உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே, நாத்யஷ்ணஸ்தஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீனஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. சப்துகாத் நாத்யஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி, நா மத்லப் கபி நஹி அதி மன அதிக் அஷ்ணதஹ கானே வாலே கா தூ, லேக்கின் யோகோ பகவான் கே சாத் ஜுடனா அஸ்தி ஹை. ஔர் ஆகே ந ச ஏகாந்தம், ந மன கபி நஹி ச மன பி, ஏகாந்தம் ந பில்குல் யா இக்தம் தோடா சா நிதாந்த், அனஷ்ணதஹ போஜன் நா கர்னே வாலே கா. ஆகே ந சாதி ஸ்வப்னஸ்ய சீல் ஜாக்ரதி, ந மத்லப் கபி நஹி ச மன பி அத்தி அத்யதிக் ஸ்வப்னஷீலஸ்ய யானி சோனே வாலே கா ஜாக்ரத அத்வா ராத் வர் ஜாக்தே ரஹ்னே வாலே கா. நைவ சார்ஜுன, ந மன கபி நஹி ஹி ஏவ மன ஹி ச மன ததா அர்ஜுன ஹி அர்ஜுன். அனுவாத் ஹி அர்ஜுன், ஜோ அதிக் காதா ஹை யா பஹுத் கம் காதா ஹை, ஜோ அதிக் சோதா ஹை அத்வா ஜோ பர்யாப்த் நஹி சோதா, உஸ்கே லியே யோகி பன்னே கி கோய் சம்பாவனா நஹி ஹை. தாத்பரிய ஸ்ரீல பிரபுபாத் த்வாரா ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் ஹோ. ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஜி சம்ஜா ரஹே கி யஹாம் பர் யோகியோ கே லியே போஜன் ததா நீந்த் கே நியமன் கி சம்ஸ்துதி கி கயி ஹை. அதிக் போஜன் கா அர்த் ஹை ஷரீர் ததா ஆத்மா கோ பனாய் ரக்னே கே லியே ஆவஷ்யக்தா சே அதிக் போஜன் கர்னா. மனுஷ்யோ கோ மாம்சாஹார் கர்னே கி ஆவஷ்யக்தா நஹி ஹை, கியூகி பிரச்சூர் மாத்ரா மே அன்ன ஷாக் ஃபல் ததா துக்த உப்லப்த ஹை. ஏசே சாதே போஜ்ய பதார்த் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கே அனுசார் சத்தோ குணி மானே ஜாதே ஹை. மாம்ச ஆஹார் தோ தமோ குணியோ கே லியே ஹை, அதஹ ஜோ லோக் மாம்ச ஆஹார் கர்தே ஹை, மத்யபான் கர்தே ஹை, தூம்ரபான் கர்தே ஹை ஔர் கிருஷ்ண கோ போக் லகாயே பினா போஜன் கர்தே ஹை, வே पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंति आत्मकारण। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पण नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णतया प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विद्या निकाल कर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक स्वप्न देखता है, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। श्लोक नंबर 17 कृपया मेरे साथ पढ़िए। भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 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 शब्दों का अर्थ, युक्त आहार विहारस्य। युक्त मना नियमित, आहार मना भोजन, विहार मना आमोद प्रमोद का। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त अर्थात नियमित, चेष्टा, चेष्टस्य मतलब जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का। कर्मसु यानी कर्म करने में। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त मना नियमित रूप से स्वप्न अवबोधस्य मतलब नींद तथा जागरण का। योगो भवति दुःखः, योग मतलब योग अभ्यास, भवति मतलब होता है, दुःखः कष्टों से, कष्टों को नष्ट करने वाला। अनुवाद, जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगा अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इससे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त होता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सत्वगुणी नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्व अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना एक मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते ही थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है। और इंद्र तृप्ति से अदूषित रहता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने कार्य वचन निद्रा जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथं पीतं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चनं गारांगे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। छठा अध्याय ध्यान योग। आज भगवान अत्यंत ही सुंदर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के विषय में बता रहे हैं भगवान। दीज आर टू ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ अवर लाइफ, ईटिंग एंड स्लीपिंग, है ना। भगवान इन दो वस्तुओं के विषय में बता रहे हैं। और यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा श्लोक नंबर 15, तो भगवान उसमें हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे थे। भगवान ने क्या बताया, शांतिम निर्वाणम परमं मत संस्थाम अधिगच्छति, कि जब मनुष्य शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। यानी भगवत धाम की भगवान बात कर रहे थे और आज भगवान डायरेक्ट से लोएस्ट चीज के विषय में आ रहे हैं। अब लोएस्ट चीज क्या है संसार में, जैसे चार चीजें हैं जो केवल भौतिक शरीर के लिए की जाती हैं, आहार निद्रा वही मैथुन, ये चार चीजों तो उन्हीं में से दो के बारे में भगवान बता रहे हैं, निद्रा और आहार। भगवान कहते हैं नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नैचैकात अनश्नतः। भगवान कहते हैं अश्न कहते हैं खाने को, भगवान कहते हैं ना अति अश्नतः ना ही ज्यादा अधिक ज्यादा खाना है और ना चाहे एकांत अश्नतः कि ना ही कम, एकांत मतलब बिल्कुल थोड़ा सा खाना है। और नीचे लाइन में भगवान बताते नाचा अति स्वप्नशील ना ही बहुत ज्यादा सोना है जागृत होना है वाचन और ना ही बहुत ज्यादा जागना है। यहाँ पर भगवान खाने और सोने को नियमित करने के विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन कृष्ण प्राप्ति के लिए मिला है। तो अगर कोई लोग अभी इन दो चीजों के विषय में बताया ना, खाना और सोना, वास्तव में ये एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। आगे हम जाके पता चलेगा, श्री प्रभुपाद ने अभी बताया अभी तात्पर्य में कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो पहले हम सोने के विषय में बात करें उसके बाद खाने के विषय में बात करते हैं, ठीक है। ये जो सोने की क्रिया है वो मनुष्य में जानवर में सब में इक्वल होती है। और सोते समय किसी को ये बोध नहीं होता है कि मैं राजा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ या मैं कुत्ता हूँ बिल्ली हूँ। जो भी सोते हैं तो सो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। राजा को ये नहीं पता होता है कि मैं सो रहा हूँ, प्लस कुत्ते को भी ये याद नहीं रहता है कि मैं सो रहा हूँ तो कुत्ता हूँ, तो यानी सोते समय ऑल आर वन है ना, सब एक ही है। अब सोने के टाइम पर भी तीन प्रकार का सोन मतलब स्टेज जो जीवन की होती है तीन होती है। एक तो जागृति होती है, ठीक है, जागृति में क्या होता है, शरीर भी जाग रहा है मन भी जाग रहा है, सब कुछ शरीर जाग रहा है लेकिन अब आत्मा सोई हुई होती है, फिर भी उससे याद नहीं होता है। जैसे हम आत्मा विस्मृति में होती है, उसे पता नहीं होता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करना है या जो करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन जागृति में क्या होता है, शरीर और मन दोनों जाग रहे थे। उसके बाद एक दूसरी अवस्था होती है स्वप्न। स्वप्न में क्या होता है, शरीर सो रहा होता है मगर मन जाग रहा होता है ना, मन सोच रहा होता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कभी कभी हम सपने में देखते हैं कि मैं वृंदावन गया हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है मैं भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ, तो मन जाग रहा होता है लेकिन शरीर सो रहा होता है। तो जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, मन सोने के टाइम पर यही सोच रहे होते हैं, मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ, आज इतने कस्टमर आए मेरे, आज मेरा सर्वेंट नहीं आया तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो क्या वो जब मन में ऐसा सोच रहे होते हैं ना, विचार कर रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर सो नहीं सकते है ना उसका मन, क्योंकि सोने का क्या मतलब होता है कि आपका शरीर भी सोए और आपका मन भी सोए, क्योंकि आपके शरीर और आपके मन दोनों को रेस्ट की आवश्यकता होती है। परंतु क्योंकि सोते नहीं है ना लोग, मन उनका नहीं सोता, चिंतन इतना होता है भौतिक वस्तुओं का, पीपल स्लीप टू मच बट डू नॉट स्लीप प्रॉपर है ना, सही तरह से सोते नहीं है भले कितना ही सोते रहे। कोई कोई लोग बहुत बहुत देर तक सोते हैं, उठते हुए दोपहर को 12-12 1-1 बजे तक सो रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली सोते नहीं है, इसलिए वो हमें ऑलवेज डिस्टर्ब होते हैं, एंग्री होते हैं और एक दूसरे को जैसे काट रहे होते हैं, क्योंकि मन संतुष्ट नहीं है ना, नींद प्रॉपर नहीं आई, फ्रेश नहीं हुए। तो एक स्थिति वो होती है जिसको बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्या होता है, मन भी सो रहा होता है शरीर भी सो रही थी, मतलब डीपेस्ट स्लीप होती है जिसमें सपना भी नहीं आता, तो वो वास्तविक निद्रा होती है। और वो वास्तविक निद्रा कैसे आती है, जब हमारा आहार जो है वो एकदम इक्वल। भगवान ने क्या बताया, नात्यश नतस्तु योगोस्ति न सैकांतम अनश्नता, आपको ना ज्यादा खाना है और ना ही कम खाना है, न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, और ना ही आपको अधिक सोना है और ना ही बिल्कुल नींद नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो योगी नहीं बन सकोगे। योगी मतलब भगवान से जुड़ने के लिए आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने बताया, जो ज्यादा ज्यादा खाता है ना वो क्या करता है, वो सोता ही रहेगा सारा दिन क्योंकि सपने देखा गया ज्यादा, तो अपनी नींद को एकदम है ना पंक्चुअल करना, एकदम रेगुलेट करना है। ऐसे नहीं है कि बस कुछ कुछ लोग है ना सोते रहते हैं, जैसे ट्रेन में हम देखते हैं जब देखो सोते रहते हैं, बर्थ भी नहीं बंद भी नहीं करते, सोना सोना उनको अच्छा लगता है। किसी के घर में भी जाओ, सुबह को जाओ तो भी सो रहा होता है, शाम को जाओ तो भी सो रहे होते हैं, और फिर रात को जागते फिर वापस सुबह को सो जाते, पता नहीं कैसी लाइफ होती है, ये तो मनुष्य की लाइफ नहीं है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मनुष्य की लाइफ में, जीव को मनुष्य की लाइफ मिलती है बहुत ही कठिन तपस्या के बाद, तो उसमें एक एक सेकंड को एक एक मिनट को हमें इस तरह से रेगुलेट करना चाहिए, इस तरह से युक्त करना, नियमित करना है कि हमारे समय का एक क्षण भी जाया ना हो। परीक्षित महाराज बताते हैं, बचपन तो खेल कूद में चला जाता है, जवानी मस्ती मजाक में इस तरह सब चला जाता है, और उसके बाद जब बूढ़ापा आता है तो सोचते हैं कि क्या मैंने सारी जिंदगी जाया कर दी सिर्फ ना बीवी बच्चों को पालने के लिए, अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। प्रहलाद महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 100 साल होते हैं, उसमें 10 साल हम बच्चे होते हैं, बच्चे में क्या होता है उसको पता ही नहीं होता है कि सारी, उसको अभी चीजें समझ में आना शुरू हुई होती है, ये क्या है वो क्या है। ऐसे अभी बच्चों को पढ़ाते हैं 10 साल तक, तो उसको पता ही नहीं चलता कि आत्मा क्या है, भगवान हमारी जीवन का लक्ष्य क्या है। 10 साल ऐसे जाया हो जाते हैं, और अगले ही 10 सालों में ना वो उसको पता चला है, मतलब 10 से लेकर 20 साल तक उसको इंजॉय करना होता है ना। 20 साल अभी बच्चा हो गया, ये मेरे इंजॉयमेंट का टाइम है, स्पोर्ट्स में और एक्टिंग में और ये सब म्यूजिक में हर चीज में वो इंटरेस्ट लेगा, मोबाइल में ये करेगा वो करेगा। पता नहीं कैसे अपने आप को समझता है कि मुझे संसार में सबसे बड़ा हीरो हूँ संसार का, है ना, 20 साल तक। और 20 साल के बाद उसको लगता है अब मुझे शादी करनी है, अब मुझे घर बनाना है। तो बस 20 साल से लेकर 60-70 साल तक, 30 साल, मतलब 20 से लेकर 70 साल उसकी जिंदगी में केवल कमाना 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 भूला हो जाता है। तब तक उसको ऐसा लगता है ये भी घर ले लूं, वो भी घर ले लूं, बच्चों की शादी करानी है, फिर पोते आएंगे, फिर ये आएगा। जीवन में केवल उसको, उसकी लाइफ का, अपने जीवन का गोल केवल अर्निंग अर्निंग अर्निंग, धन अर्जित करने के अतिरिक्त कोई नहीं। और फिर इतना बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद इतना बूढ़ा हो जाता है, शरीर इतना रुग्ण हो जाता है, इतने रोग जमा हो जाते हैं कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास समय कहाँ है। हर एक टाइम तो उसने अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए गंवा दिया। तो ये ऐसा, ये मनुष्य का जीवन नहीं है। और उसमें से भी अगर आधी जिंदगी केवल नींद को दे दी हमने, है ना, खाली नींद नींद करते रहते ज्यादा समय, तो फिर कैसे अपनी जिंदगी में हम भक्ति करेंगे। वास्तव में भक्तों, हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो प्रेशियस जो चीज है ना, वो है समय। अब समय जो है ना वो इतना ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर हाथ से निकल गया तो करोड़ रुपए देने के उपाद भी कोई भी बूढ़ा बोले चलो ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैं किसी को देता हूँ, मेरा समय पीछे कर दो, वापस से रिवाइंड करो, मैं 20-25-30 साल का हो जाऊं ताकि मैं फिर से भगवदगीता पढ़ सकूं, फिर से शास्त्र अध्ययन कर सकूं, भगवान की भक्ति कर सकूं। कोई कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहता है, मतलब ऐसे कहावत है, मैनेज योर टाइम इज मैनेज योर मनी, है ना। आप अपने समय को ऐसे मैनेज करो जैसे आप अपने धन को मैनेज करते हो। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर अपने समय को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कितना सोना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल 6 आवर्स, 6 घंटे नींद जो है वो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा तो जरूरी हम लोग मुचुकंद नहीं है, राजा मुचुकंद की एक कहानी आती है उसमें भागवत महापुराण में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मथुरा लीला को समाप्त करके द्वारिका लीला स्टार्ट करने वाले थे, तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ यहाँ पर ऐसा करूं कि ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि मैं मथुरा का मथुरा जाएं सब लोग, जितने भी द्वारिका वासी मथुरा से सब जाएं, जितने भी मथुरा वासी सब द्वारिका में शिफ्ट हों, तो कुछ ऐसा करूं। तो उस समय जरासंध ने 17 बार हमला कर लिया था और 18 बार 18 टाइम जो है ना वो आक्रमण कर रहा था। और उसी समय एक दूसरा यवन भी था, उसका नाम था काल यवन, वो भी भगवान के साथ है ना युद्ध करने के लिए आया, भगवान को युद्ध करने का उसने है ना प्रस्ताव रखा। भगवान उसके साथ है ना उसको इग्नोर कर रहे थे। भगवान ने क्या किया, अब भगवान की ऐसी लीला है कि एक राजा था मुचुकंद, उसको देवताओं ने बोला था कि इससे पहले की बहुत बात है सतयुग की, देवताओं ने उसको बोला था कि अब राक्षस हमारे पर हमला कर रहे हैं, आप ऐसा करो राक्षसों के आक्रमण से बचाने के लिए आप हमारी साइड पे आओ और लड़ाई करो। तो मुचुकंद राजा, पहले जमाने में राजा लोग जो होते थे ना बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग को याद है दशरथ महाराज भी गए थे देवताओं की रक्षा करने के लिए। देखो राजा, महान राजा जाते थे, मनुष्य जाते थे स्वर्ग में देवताओं की रक्षा करने के लिए। तो मुचुकंद राजा भी गए और वहां पर आपको पता है कि देवताओं का जो है ना समय कितना स्लो जाता है और धरती पर बहुत तेज दिल जाता है। और कई सालों तक युद्ध चलता रहा और बहुत टाइम तक युद्ध चलने के बाद युद्ध समाप्त हुआ, देवताओं की विजय हुई। अब देवता जो है वो मुचुकंद से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और कहा मांगी क्या वरदान चाहिए। आपको पता है वरदान इंसान जब मांगता है, मनुष्य को जब कोई बोलता है ना वरदान मांगो, उस समय आपको जिस चीज की बहुत 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 नीड हो रही होती है ना, आप समझते हो बस वो मुझे वरदान मिल रहा है। जैसे अगर आपने 2 दिन से पानी नहीं पिया और कोई आपके सामने अगर कोई देवता भी आ जाएगा ना, बोलेगा कोई वरदान मांगो, तो आप बोलोगे हाँ पानी है ना, पानी चाहिए। तब ये नहीं बोलोगे मुझे एक महल भी लेकर दे दो, एक बड़ा सा महल हो जिसमें पानी बहुत ज्यादा हो, इस तरह नहीं बोलोगे। आप बोलोगे पानी। अगर आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया तो अगर कोई पूछेगा आपसे क्या चाहिए, आप बोलोगे खाना, है ना। ये नहीं बोलोगे मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए जिसमें अंदर बहुत सारा प्रचुर मात्रा में खाना हो, अक्कल ही नहीं आती उस समय, क्योंकि उस समय हमने बहुत तकलीफ देखी होती है ना, वो वस्तु को प्राप्त करने में दुख के कारण हमको केवल यही वही याद है। अब महाराज मुक्षिकंद ने इतना समय तक लड़ाई की थी ना, युद्ध किया था, तो सोए नहीं थे। जब देवताओं ने कहा कि आप कोई वरदान मांगो, तो उसने बोला मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ऐसी जगह पे सोना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं सोऊं, अगर मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब किया ना, मेरी नींद अगर खराब थी ना, मैं आंखों खोलूं तो उस वो जल कर भस्म हो जाए। तो देव कैसा कैसा वरदान है, वो कुछ भी मांग सकता था लेकिन क्या मांगा, निद्रा। खैर तो फिर देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि ठीक है आप एक जगह के एक गार में बोला आप यहाँ पर सो जाओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो सत्य था। उसके बाद त्रेता युग आया और उसके बाद द्वापर युग आया। तब तक वो सो रहा था। भगवान जानते थे कि अब मुचकंद के परम धाम जाने का समय हो गया है, क्योंकि उसके अपराध तो नष्ट हो गए थे पहले से ही देवताओं के साथ, क्योंकि उसको कोई उठा सकता नहीं था। सबको पता था कि जो इसको जगाएगा वो तो भस्म हो जाएगा, भगवान भी जानते थे। तो काल यवन जब लड़ाई कर रहा था ना भगवान के साथ, तो भगवान ने एक चाल चली। भगवान दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे उसको है ना, मार नहीं कर रहे, उसके साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वो बोल रहा रुको, रण छोड़, तुम भाग रहे हो, रण छोड़ के भाग रहे हो, बहुत सारी बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी। फिर भी कृष्ण हंस रहे हैं बार बार, उसको अपना पीतांबर दिखा दिखा के आगे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और फिर जाके उस घर के अंदर चले गए भगवान, आगे जाके बहुत भागे भागे भागे, वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो घर के अंदर कौन सो रहे थे, मुचकंद सो रहे थे, और भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर उसको उड़ा दिया। जब कालेवन उसके पीछे पीछे भागा तो कालेवन ने आके देखा, उसको इतना गुस्सा आया, बोला एक तो मुझे इतना भगाया और खुद यहाँ पर आके आराम से सो रहा है, इतना जोर से लात मारी उसको, जो मुचकंद सोया होता ना उसको इतना जोर से मारा और उसका पीतांबर उठाया, तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध से इतने सालों के बाद वो जागा है। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने कालेवन खड़ा था और वो जलकर भस्म हो गया। और जब वो भस्म हो गया उसके बाद उसने सोचा क्या कर दिया मैंने, मेरी वजह से किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा भी लगा उसको। लेकिन फिर धीमे से पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण का ऐसे सामने आए, वो प्रकट हुए, दर्शन हुआ, जिनको देख कर राजा मुचकंद अत्यंत प्रसन्न हुए और देखा कि इतना सुंदर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, आप कौन हो, आपकी सुंदरता मेरे नेत्रों में समा नहीं रही है, आप कौन हो, आप कोई देवता हो, आप भगवान हो। तो अब भगवान के दर्शन हो गए थे साक्षात उसको। भगवान ने अपना परिचय कराया, एक दूसरे से मिले, कि भगवान ने बताया मैं कौन हूँ। और इस तरह मुचकंद को भगवान के दर्शन हुए और वो उनकी मुक्ति हो गई। लेकिन वो मुचकंद था, वो ज्यादा टाइम सो सकता था। आज के समय में हमारे लिए ये ना नहीं बताया गया, भगवान ने क्या कहा कि नचाति स्वप्नस्य शीलस्य जागरतो नैव चाशन, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, केवल 6 घंटे ही पर्याप्त है आपके लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फ्रेश करने के लिए 6 घंटे एकदम पर्याप्त है। अभी हम ये तो भौतिक संसारिक में क्या है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो क्या कहेंगे कि हाँ हम लोग भी तो 6 घंटे ही सोते हैं, अब शास्त्र में लिखा हुआ है 6 घंटे सो, हम लोग भी 6 घंटे सोते हैं, लेकिन सोने का समय क्या है, रात को 2 बजे से लेकर सुबह को 8 बजे तक, है ना, या फिर रात को 1 बजे से लेकर सुबह को 7 बजे तक, या फिर रात को 4 बजे 3 बजे से लेकर सुबह को 9 बजे तक, या फिर और भी ये समय सोने, खाली सोना प्रॉपर 6 घंटे नहीं है, सोने के लिए ये भी देखना जरूरी है कि किस टाइम पर सोना चाहिए। अब हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार की संध्या होती है, 3 टाइम की संध्या होती है, जानते हैं आप सब। एक तो संध्या के टाइम पर सोना बिल्कुल 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 वर्जित है, संध्या के टाइम पर कभी भी नहीं सोना चाहिए। पहली संध्या होती है सुबह को, अमृत वेला जिसको बोलते हैं, प्रभात समय पर, वो जब तमोगुण चेंज होता है सत्वगुण में, यानी कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले से लेकर और सूर्य उदय तक, ये संध्या का समय होता है 3 से 6। ये सोने का समय नहीं है, ये तो जागने का समय। इधर इस समय अगर कोई सो रहा है तो समझो कि वो अपने जीवन का सबसे मूल्यवान समय जो है वो सोने में गुजार रहा है, यानी कि उसके पास करोड़ रुपए अगर एक साथ जमा हो जाए और एक साथ ये वाला समय है तो समझो ये वाला समय ज्यादा कीमती है। और वो वाला समय सोने के लिए नहीं होता है, और हमें क्या करना चाहिए, अपने सोने को देखना है कि ये जो संध्या काल होता है ना, संध्या मतलब जब एक गुण जो है वो दूसरे गुण में चेंज होता है। अब दूसरा, दूसरी संध्या कब होती है, अब देखो सत्व गुण शुरू होता है सूर्य उदय से, और सूर्य उदय से लेकर दोपहर को 12 बजे तक सत्व गुण होता है। अब 12 बजे के बाद जो है वो रजोगुण स्टार्ट हो जाता है, रजोगुण में कार्य 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 होता है। अब उस 12 बजे के टाइम पर भी नहीं सोना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है समय, जब शाम को संध्या होती है ना, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय भी सोना नहीं चाहिए। बचपन में हम लोगों को याद है, हम बीमार भी होते थे तो हमारी माता बोलती थी, अब भले बीमार भी हो, नहीं बैठ सकते हो, तो भी क्या करो, ये समय एटलीस्ट आधा घंटा बैठ जाओ, खाली बस टेक लगा के बैठ जाओ, कुछ करो नहीं लेकिन सो नहीं। तो ये वास्तव में ये समय सोने के होते नहीं है, लेकिन आज जीव को पता ही नहीं है कब सोना चाहिए कब जागना चाहिए, जब दिल करे सो जाते जब दिल करे उठ जाते। वास्तव में टाइम क्या होना चाहिए, रात को 10 बजे से लेकर सो जाना चाहिए, 10 बजे सोने का समय होता है। मतलब संध्या आरती के बाद आप प्रसाद वसाद बनाओ, भोग लगाओ, 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे एकदम फ्रेश, 6 घंटे आपके होंगे। फिर भी अगर 10 बजे नहीं सो सकते तो 11 बजे है ना, मॉडर्न टाइम है, सब लोग बोलेंगे अभी ये तो कितने बैकवर्ड हो गए हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो, फिर भी सुबह 5 बजे आप उठ सकते हो आराम से। अगर 11 बजे भी नहीं सो सकते, 11.30 बजे सो, 5:30 बजे एटलीस्ट ये टाइम अपना बनाना चाहिए हमें, कि 10 से 11.30 बजे के दौरान हमें सो जाना चाहिए और 4 से 5:30 बजे के दौरान हमें उठ जाना चाहिए। ये वास्तविकता है, और भगवान आज हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हें कैसे सोना है। कितनी करुणा है मेरे कृष्ण की, कि वो खाना बताते कैसे खाना है आपको, सोना बताते कैसे सोना है आपको। मनुष्य जब तक पढ़ेगा नहीं भगवान ने क्या बोला है, शास्त्र क्या कहता है, कैसे सीखेगा। आज के लोग को पता ही नहीं है, समझते हैं बस हम लोग है ना, जैसे भी जिए कुत्तों की तरह जीते रहे बस। और वास्तव में क्या है पता है, जितना देर से हम सोते हैं ना, जैसे जितना जल्दी अगर हम सोते हैं, जैसे 9:30 बजे 10 बजे इस तरह सो जाते हैं, फिर हमारी नींद जो होती है वो बहुत ही, क्योंकि वो समय सोने का है ना, तो उसमें हमें बहुत गहरी नींद आती है, सुषुप्त वाली नींद आती है। जैसे जैसे रात तीव्र हो जाती है, हम देर से खाना खाते हैं, देर से हजम होता है, फिर हमारी नींद भी इतनी पक्की नहीं होती, इसलिए फिर हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, फिर क्या होता है बार बार नींद आ रही होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए रात का डिनर बहुत लाइट होना चाहिए, और लाइट प्रसाद हम खा के जल्दी से सो जाने की कोशिश करनी चाहिए, कि जल्दी सो जाए। और सुबह को फिर जल्दी अगर हम सोए ना, लाइट प्रसाद खाएंगे, तो वो भी खाने से बहुत टाइम पहले, सोने से बहुत टाइम पहले खाना चाहिए, ताकि ना वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए और सुकून से सोके। फिर जब सुकून से बंदा सो के सुबह को उठेगा, इतना फ्रेश होगा कि आपकी जपा कंप्लीट हो जाएगी, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको मंगल आरती भी इतनी अच्छे से हो जाएगी, फिर पूरा दिन आप कुछ भी कर सकते हो, इतना इजी लाइफ हो जाएगी। तो हमें ना कोशिश करना चाहिए कि अपने, आज भगवान बता रहे हैं कि आपको अपने सोने और खाने के टाइम को बहुत ही, टाइम को भी देखना है, क्वालिटी देखनी है आपको, कैसे आप है ना सो रहे हो, कैसे खा रहे हो। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि कोई आध्यात्म में सीरियस है, यानी व्हाट इज द टेस्ट दैट वन इज सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ, कैसे पता चले। तो इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं, कोई जैसे हमें पता चलता है, कोई शास्त्र पढ़ने में बहुत ज्यादा सीरियस होता है, कोई डीटी वर्शिप में बहुत ज्यादा सीरियस होता है, कोई है ना प्रसाद बनाता है, बहुत अच्छे अच्छे भगवान के लिए वस्त्र बनाता है। तो सब अपना अपना आंसर दे रहे थे, लेकिन श्रीला प्रभुपाद से इज नॉट, ये सब नहीं है। सब श्रीला प्रभुपाद की तरफ देख रहे थे कि अब श्रीला प्रभुपाद जी क्या बताएंगे। तब श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा द टेस्ट दैट वन सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज दैट वन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई शव उठता है और भगवान के लिए अपनी निद्रा का त्याग कर रहा है और भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, अपनी प्रभात साधना कर रहा है, तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो एकदम सीरियस है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहता है। अब भले हमें मुश्किल लगता है शुरू शुरू में, जाहिर सी बात है, हमने करोड़ों करोड़ जन्मों से जानवरों की तरह जिया है, तो यूं डायरेक्ट से योगी बनना बहुत कठिन है। परंतु ये भी तो देखना है कि गोल कितना महान है, है ना। यदि गोल प्राप्त हो जाएगा, अपनी निद्रा क्या है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। जितना ज्यादा सोएंगे उतना ज्यादा समय वेस्ट होगा, लेकिन इस निद्रा को जीत कर अगर हम अपने जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, गोलोक को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः इस संसार में वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं, तो कितना ये बड़ा, कितना हमारे लिए फायदेमंद सौदा है। तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। वास्तव में शुरू शुरू में हमें मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास करेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल करते 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 एक दिन हैबिचुअल हो जाएंगे। और फिर हम सोना भी चाहेंगे ना, ज्यादा समय तो नहीं सो सकेंगे। मुझे याद है मेरी मम्मी कभी कभी है ना वो बोलती थी कि आज मैं रात को बहुत देर से सोई हूँ, तो 5 बजे नहीं उठना है मुझे, लेकिन फिर भी उनकी नींद खुल जाती थी क्योंकि हैबिचुअल थी, उनको पता था कि मुझे बस नींद ही नहीं लगती थी। अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि कितना शुक्र है भगवान का कि हमें हिमालय में जाकर तपस्या करने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? बस सुबह सवेरे उठकर मेरे नाम का जप करो। कितना इजी कर दिया है भक्ति को। लेकिन इतना तो हमें करना चाहिए ना भगवान के लिए, इतना भी नहीं करते। और दूसरी बात भगवान ने बताई, ना त्यश न तस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनष्टतः, कि ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बस हर वक्त खाना 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 जीने, मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि मैं जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ। केवल बस आहार ही। कभी क्या करेंगे, सुबह सवेरे उठ के पहले उनको ब्रेक टी चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर स्नैक्स चाहिए, फिर वापस लंच चाहिए, फिर शाम का स्नैक्स चाहिए, सूप चाहिए, और फिर वापस ये खाओ वो खाओ, चाय के साथ खाओ, फिर वापस डिनर खाओ। पता नहीं कैसे जीते हैं, खाली खाना खाना खाना। पता नहीं कैसे इन लोग को ऐसा लगता है कि खाते रहे हम लोग। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं जितना ज्यादा खाएंगे, अगर आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो ज्यादा समय सोएंगे और ज्यादा सपने देखेंगे, फिर ज्यादा समय हमारा वेस्ट होगा। तो मनुष्य को पूरा ना बैलेंस रखना चाहिए खाने में। तो खाना कितना खाना चाहिए कि जितना हमारे स्टमक में आधा जो है वो खाने से भरना चाहिए, अनाज से, फूड से भरना चाहिए, और मतलब हाफ जो है वो फूड से भरना चाहिए, और क्वार्टर जो है वो पानी से भरना चाहिए, और जो उसके बाद क्वार्टर है वो एयर से भरना चाहिए। अब इसमें बैलेंस रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि खाना में ऐसे नहीं मनुष्य बने हो मनुष्य का आहार करो, सात्विक आहार करना चाहिए। ये मांसाहार, ये स्पाइसी, ये सब मनुष्य के लिए नहीं बना है, मनुष्य के लिए। भगवान आगे बताएंगे, श्लोक हम पढ़ेंगे ना 18वां अध्याय 17वां अध्याय, उसमें बताएंगे किस तरह का आहार करना चाहिए। सात्विक आहार करना चाहिए, एकदम जो ज्यादा तीखा नहीं हो, जो ज्यादा वो मसाले वाला नहीं हो, ज्यादा ऑयली नहीं हो, ऐसा हो जो भगवान को अर्पित किया जा सके। अन्य गार्लिक, ये नॉन वेजिटेरियन, ये सब तो बिल्कुल खाने ही नहीं चाहिए, मनुष्य ही नहीं है अगर हम ये सब वस्तुएं का उपयोग कर रहे हैं। तो जानवर हैं जो जो दिल करे वो खाते जाए, मुंह में डालते, जैसे कोई कोई लोग ऐसे मुंह में डालते रहते ना, पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स ना करते हैं, जैसे पेट नहीं है, कोई डस्टबिन है, डालते जाओ उसके अंदर, डालते जाओ। और दूसरा ये कि जब हम प्रसाद खा रहे होते हैं तो उसमें केवल ये नहीं देखना है कि कितना, कोई कोई लोग बोलते हैं हम तो बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाते हो तो क्या खाते हो, किस समय खाते हो, क्या क्वांटिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है, क्या टाइमिंग होती है, हर एक चीज देखना है। टाइम को भी देखना है कि आपको कितना, कितने समय के बाद खाना है, क्वालिटी को देखना है कि आप जो खा रहे हो वो किस क्वालिटी का फूड है। और इससे भी वो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है एटमोसफेयर, है ना, जहां पर आप खा रहे हो वहां पर एटमोसफेयर। हर कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी के सामने खाते हैं, अब टीवी में गंदा सब देख रहे हो और उधर से आप खा रहे हो तो आप अनाज खा रहे हो तो ना उसके अंदर वो गुण जाता है, फिर आप हमेशा टेंशन में होते हैं ना जीव, इसीलिए होते हैं क्योंकि वो खाने के टाइम पर वो वही है ना टेंशन वाली डिप्रेशन वाली वीडियोस वो या फिर जो भी देख रहे हैं ना टीवी में, वो उसमें कोई वास्तविकता तो है नहीं, तो उसको देखते हुए आप खा रहे हो तो आपका उससे अमंगल होगा। तो एटमोसफेयर नाइस होना चाहिए, काम होना चाहिए, है ना, खाने से पहले मंत्र पढ़ना चाहिए महाप्रसादे गोविंदे, कि कृष्ण तुम्हारी कितनी कृपा है कि आपने अपना प्रसाद मुझे प्रदान किया है जो कि मेरे समस्त क्लेशों को, भौतिक रोगों को समाप्त कर देगा, एकदम कूल काम एंड बहुत ही सात्विक माहौल में भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक बात यह है कि वो जो आप खा रहे हो वो सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करने से बात क्या होता है, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया भगवद गीता में 3.13 में भगवान ने बताया, यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्व केलबिषम। अगर आप भगवान को अर्पित करके फिर प्रसाद खाते हो तो आपके समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं। भुंजते थे तो अगम पापा ये पचन्ते आत्मा कारण। अगर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाते हो तो आप बहुत बहुत अपराध जो है ना उनको आप ग्रहण कर रहे हो। अपराध का परिणाम क्या होता है, पनिशमेंट होता है, फिर आपको बहुत बहुत पनिशमेंट मिलती हो सकता है अगले जन्म में, कुत्ता बिल्ली हाथी कुछ बना दिया जाए। तो हमें अपने आहार और अपनी निद्रा को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है कि उसको मिस गलत तरीके से नहीं करना है, उसको सही तरह से कैसे करना है भगवान बताते हैं आगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। आहार ही खाली नहीं है, आहार नियमित होना चाहिए। भगवान कहते हैं आहार एकदम नियमित होना चाहिए, समय पे खाना चाहिए और अर्पण करके खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए। केवल आहार ही नहीं, विहार भी। विहार का क्या मतलब होता है, जैसे हम किसी के साथ एसोसिएशन होती है ना, आमोद प्रमाण, किस तरह से बात कर रहे हैं। आज का क्या होता है, समय को कैसे, यानी कि विहार का मतलब अपने आप आचरण कैसे है आपके जीवन में। तो आजकल क्या है, जीवन को पूरा सत्यानाश किया हुआ है, केवल इंद्र तृप्ति ही हमारे लिए एकमात्र जीवन का लक्ष्य बन गई है जी। और आज मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न सोसाइटी ने तो टाइम को वेस्ट करने के लिए अपने और भी अधिक से अधिक, जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से टाइम वेस्ट कर सकता है ना, सबसे ज्यादा अक्लमंद वही है। ये जो टीवी में इतने सारे फिजूल के ड्रामे होते हैं और मोबाइल में इतनी सारी गेम्स होती हैं, कंप्यूटर ये वो, उसमें भी पता नहीं क्या क्या फिजूल की चीजें होती हैं, और मोबाइल में व्हाट्सएप पे भी सब गॉसिप करते हैं, सब टाइम वेस्ट करते हैं। केवल टाइम अब सबसे ज्यादा कीमती चीज है ना, उसका वेस्ट करते हैं फिजूल में। फ्रेंडशिप, हजारों की फ्रेंड लिस्ट होती है और हर किसी के साथ आपको लिंक बना रखना है, हर किसी को आपको बताना है, हर किसी से आपको संबंध जोड़ने हैं, हर किसी को आपको पहचानना, क्या जरूरत है। शुद्ध भक्तों के साथ संग में रहो और ये बताओ कि मैं जप कितना करता हूँ, मेरी माला क्यों अच्छी नहीं हो रही है, मैं शास्त्र में क्यों नहीं रुचि हो रही, भगवत प्राप्ति में मैं सीरियस क्यों नहीं हो रहा हूँ, भगवान की सेवा क्यों नहीं अच्छी। ये बात नहीं होगी बस गॉसिप करेंगे, एक दूसरे की बातें करेंगे, तो यहाँ पर बता रहे भगवान ऐसे सब नहीं करना अपने समय को। युक्त आहार विहारस्य, और उसके बाद युक्त चेष्टस्य। चेष्टस का मतलब होता है काम, जिसे हम करते हैं ना जीवन में निर्वाह के लिए, धन अर्जन करने के लिए काम करते हैं, वो भी युक्त होना चाहिए। युक्त माना नियमित होना चाहिए। यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, ह्यूमन लाइफ इज मींस बाय रेगुलेशंस, विदाउट रेगुलेशन इट इज एनिमल लाइफ। अगर नियमित नहीं है आपके जीवन में, तो फिर जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? वो भी दिल करता है जो करता है वो। अगर आपने अपने जीवन को नियमित नहीं बनाया, रेगुलेशन नहीं आपके जीवन में, कोई क्वालिटी नहीं है आपके जीवन की, तो फिर धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। हा? तो यहाँ पर भगवान बता रहे, भगवान जीना सिखा रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म। आपको काम भी अधिक नहीं करना है, 8 घंटे काम करना पर्याप्त है। जैसे बिजनेस करते हैं लोग, कोई कोई लोग 14 घंटे करते हैं, कोई कोई 16 घंटे करते हैं। केवल उनके जीवन का लक्ष्य धन अर्जित, और अधिक धन, पार्ट टाइम जॉब करते और अधिक। और अरे बाबा, तुम्हारे जीवन में जितना लिखा हुआ है वो तुम्हें मिलेगा किधर जाएगा? तो फिर आप इतना करो कि आप घर में कमा कर आ सकते हो, घर में भोजन और है ना, घर वालों को जो ट्यूशन फीस स्कूल फीस इतना हो जाए बस काफी है। अधिक अगर आप अधिक चेष्टा करोगे ना धन अर्जित करने के लिए, तो क्या होगा, आध्यात्मिकता के लिए समय नहीं बचेगा। आप अपनी जिंदगी से इतने थक जाओगे कि आपको ये भी पता करने के लिए भगवद गीता पढ़। अभी हमारे हमारे यंगस्टर्स का ये हाल है कि इतना इतना एजुकेशन हासिल करते हैं, एक छोटी सी भगवत गीता 700 श्लोक किसी ने पढ़ी नहीं, किसी को इतना लगता ही नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं लगता। पूछने के लिए बोलेंगे भाई हाँ, क्या भगवत गीता खाली अदालत में हाथ रखकर कसम खाने के लिए है कि मैं गीता पर हाथ रख के झूठी कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा? इसके लिए थोड़े, भगवत गीता भगवान जीना सिखा रहे हैं, हमारी अपनी किताब है, हमको इसको पढ़ना है, ये हमें कैसे जीना है वो सिखा रही है, लाइफ का गाइड है ये। तो फिर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको अपने कर्म जो है ना, वो भी चेष्टा जो है वो भी नियमित रूप से करनी है, वो भी रेगुलेटेड रेगुलेशंस के साथ करनी है। और अगर आप अधिक करोगे तो फिर क्या होगा, अभी तो आप आध्यात्मिक में समय नहीं बिता सकोगे, फिर जब बाद में रिटायर हो जाओगे तो इतने बीमार हो जाओगे क्योंकि आपने अपने जीवन को इतना थका दिया होगा कि फिर भी आप नहीं भक्ति कर सकोगे। तो आगे भी भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, वही बात बता रहे हैं, स्वप्न व बोध यानी नींद और जागृति को एकदम युक्त रखना। योग आगे कहते हैं योगो भवति दुखा, जो ऐसा नहीं करता, जो अपने जीवन को नियमित नहीं करता, जो सोने में खाने में आमोद प्रमोद में काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योग अभ्यास द्वारा अपने समस्त भौतिक कष्टों को समाप्त कर सकता। वास्तव में भौतिक कष्ट क्या है, सबसे बड़ा भौतिक कष्ट ये है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है, हम इस दुखों भरे दुनिया में है, दुख काल है, हम अशाश्वतम जीवन में है। तो फिर इस दुनिया से ही यानी इस दुनिया में भी रहकर अब आप अगर है ना अपनी नियमित रूप में खा रहे हो, नियमित आप सो रहे हो, नियमित आपकी लाइफ इतनी बिल्कुल सही तरह से नियमित बनाई गई है, युक्त है, तो फिर आपको भौतिक कष्ट जो मिलते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट या फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें भी आपको इतनी ज्यादा, ये जो तीन ताप है ना, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये भी उसी को ज्यादा, अभी भौतिक लोग जो होते हैं, जो मतलब संसार में जो लोग तंग करते हैं, वो भी भक्त को नहीं तंग करते ना, भक्त को छोड़ते बोलते बेचारा छोड़ दो उसको, उसके बाद आजकल फिर भी है ना इतनी ज्यादा हो गई कि खुद भक्ति नहीं करते तो भी क्या सोचते कि ठीक है हम नहीं करते तो ये बेचारा कर रहा है, तो उसको जो वाकई में सीरियस भक्त होगा ना उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अभी जो दिखावे के लिए करते हैं फिर बाद में फिर बातें भी सुननी पड़ती है उनको कि ना खुद तो ऐसा है और प्रचार करने लगा, मेरे जैसे भक्त को कोई कह के जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं ना उनको नहीं कहते, उनको ये आदि भौतिक कष्ट कम मिलते हैं और फिर आदि दैविक कष्ट भी उसको फील नहीं होते हैं, सर्दी हो रही है तो भी गर्मी हो रही, तो क्योंकि वो पूरा जुड़ा हुआ है ना कृष्ण के साथ तो उसको ये सब लगते नहीं है। और आध्यात्मिक कष्ट तो उसको होते ही नहीं क्योंकि चिंता होती नहीं है, वो केवल चिंतन करता है, मन दो काम एक साथ नहीं करता है, मन एक काम एक टाइम पर करता है, या तो चिंतन करेगा या चिंता करेगा, और भक्त को चिंतन करने से समय नहीं मिलता, भगवान का चिंतन करता है सदैव, तो फिर उसके पास है ना ये जो भौतिक कष्ट है ना वो आते नहीं। इसलिए भगवान कहते योगो भवति दुःखा, ये जो भौतिक कष्ट है योग के द्वारा खत्म किए जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में सदैव सतर्क रहता है। उसे पता होता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं, निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता है। उसको पता होता है अभी मैं सो जाऊंगा तो मेरा जप तो रह जाएगा, है ना। सुबह को अगर नहीं हुआ फिर तो रात तक मेरे को माला घुमानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में तो ऐसा साफ सुथरा ऐसा अच्छा समय नहीं मिलेगा। तो निद्रा में समय वेस्ट नहीं करता है और वो कम सोता है और अपने समय को एक मिनट भी जाया नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है एक एक समय एक एक मिनट कितना ज्यादा कीमती होता है। उसके आदर्श अब यहाँ पर गोस्वामी धर्मकृष्ण प्रभुपाद जी ने मिसाल दी है कि रूप गोस्वामी क्या करते थे, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, दिन भर में सिर्फ 2 घंटे सोते थे, अधिक नहीं सोते थे। और हरिदास ठाकुर क्या करते थे, खाते और सोते कब थे, जब उनका 3 लाख बार जब कम्प्लीट होता। हम उनकी तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने समय को इस तरह से डाल सकते जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि आप है ना सिर्फ 6 घंटे सो, और वो भी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अब क्योंकि कृष्ण भावना भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न नहीं होता है, वो जो भी कार्य करता है कृष्ण की सेवा के लिए करता है। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा था कि ना फिर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं सिर्फ 2 चपाती खाऊंगा, मैं अपना आहार को कम करना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा क्यों 2 चपाती क्यों खा रहे हो, आपको बहुत सारी भक्ति करनी है, आपको बहुत सारी सेवा करनी होती है, यहाँ पर मंदिर साफ करना होता है और भी दूसरे बर्तन सेट करने होते हैं मंदिर में बहुत सारी, आपको तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो आप 4 चपाती खाओ। अगर आप अपने जीवन को अपने शरीर को भक्ति में लगा रहे हो तो 4 चपाती खाओ, उससे भी ज्यादा अगर आपको नींद है तो उतनी खाओ। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो अपने जीवन से अपने शरीर को कृष्ण सेवा में नहीं लगा रहे हो, तो फिर अगर आप 2 चपाती भी खा रहे हो ना तो वो भी इंद्रिय तृप्ति है, वो भी आपके लिए बुंजते थे त्वगम पापा ये पसंद के आत्म कारण। तो हम ये देखना है, अभी हर एक शरीर का अलग अलग होता है। भीम को अगर कोई कहा जाए कि भाई आप 2 चपाती खाओ तो वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा, लेकिन सबके लिए अपना होता है कि कितना आप खाओ, आपको लगे कि मैं इतना खाकर पूरे तरीके से भगवत सेवा कर सकता हूँ, नींद भी ज्यादा नहीं आ रही है और मैं अच्छे तरीके से, ऐसा भी नहीं पेट भर के खाना चाहिए लेकिन पेट भार के खाते कुछ कुछ, ऐसा नहीं, नियमित होना चाहिए, समय पर खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं 9.26 में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रतम प्रश्नामि प्रियतात्मना, के पत्र पुष्प फल जल और इस तरह की सात्विक वस्तुएं यदि हम खाते हैं भगवान को अर्पण करके, तो फिर उसका ऐसा अच्छा रिजल्ट आता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हृदय के अंदर भक्ति करने का भाव उठता है और हम कृष्ण सेवा में खुद को समर्पित कर सकते हैं। वास्तव में भक्तों, मनुष्य जीवन का लाभ यह है कि हम भगवान की भक्ति करें। और जब ये योग जो भगवान बता रहे, ये खाली योगियों के लिए नहीं, योग का मतलब है भगवान के साथ समय जोड़ना। तो ये जब हम अपने समस्त आदतों को, अपने खाने को, अपने सोने को, अपने आमोद प्रमोद को, काम करने की आदतों को अगर नियमित करेंगे तभी हम भगवान के साथ अपना योग जोड़ सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जो बता रही हूँ उस पर खुद अमल कर सकूँ, ताकि आप लोग को भी ना सुन के प्रभाव पहुंचे और आप उसका कर सको, उसको फॉलो कर सको। क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर बताने वाला जो होता है ना वो अगर प्योरिटी से नहीं बता रहा होता, उसके अंदर अगर उसका आचरण सही नहीं होता है, फिर सुनने वालों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। अब अगर आप लोग चाहते हो कि भक्ति में आगे बढ़ो तो फिर या तो किसी और वक्ता को सुन लो या फिर मेरे लिए प्रार्थना करो। हरे कृष्ण।